मेरे प्रिय युवा साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने बार बार मुझसे लिख करके यह अनुरोध किया है कि सर, जिस तरीके से आप प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के बारे में बातें कर रहे हैं, आपने हिस्ट्री के बारे में बातें की हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में बातें की हैं और उनसे हमें बहुत फायदा मिला है, तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज, आजकल दबाव डालने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल खूब किया जाता है ना, प्लीज प्लीज एंड प्लीज पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी कुछ इसी तरह की बातें करें। तो आप सबका जो अनुरोध है वो मेरे सिर माथे है और मैंने फिर फैसला किया है कि नहीं, हमें इस विषय पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि यह भी विषय बात करने की जरूरत मांगता है। और आप देखिए कि अगर आप अपने प्री एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट उठा करके देखेंगे तो उनमें लगभग चार जो इम्पॉर्टेंट पिलर्स जिन्हें मैं कहता हूँ, उनमें पॉलिटिकल साइंस बहुत महत्वपूर्ण पिलर है और मेंस में तो इसका रोल बहुत ही ज्यादा हो जाता है। आप कह लीजिए कि पूरा एक पेपर ही इसने अपने कब्जे में ले रखा है, जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है। और जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मुझे लगता है कि शायद ही कोई साल ऐसा रहा होगा जब इस सेक्टर से 12-13 से कम क्वेश्चन आए हों। एक साल जरूर मुझे याद आ रहा है कि शायद 7-8 साल पहले की बात है कि इस सेक्शन से शायद 4-5 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आप मान करके चलिए कि हमारे जैसे चार सब्जेक्ट हैं और चार सब्जेक्ट से हम मिनिमम 60 क्वेश्चन मानकर चलते हैं, तो एक के हिस्से में 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 15 क्वेश्चन में से हो सकता है कि सभी में बराबर बराबर डिवाइड न किया जाए, लेकिन किसी भी हालत में 10-12 क्वेश्चन से कम तो पॉलिटिकल साइंस से नहीं ही होंगे, और यह संख्या किसी भी मायने में कम नहीं है। और आपकी यह मजबूरी है, चाहे आपको यह विषय पसंद आए या ना आए, कि इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना ही करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि प्री क्वालिफाई कर जाए, दूसरे जो सब्जेक्ट से आपके बहुत बेहतर हों, लेकिन ये मान करके चलिए कि मेंस क्वालिफाई करना तो लगभग असंभव सा ही हो जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पॉलिटिकल साइंस से ही पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, देश की जो राजनीतिक स्थिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनसे ही पूछे जाते हैं। तो किसी भी हालत में आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर मत कीजिए, बल्कि टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। आइए अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके चरित्र के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। मैं जो चरित्र के बारे में बातें करने जा रहा हूं, इनफैक्ट उसका संबंध इस तथ्य से है कि आपको इस विषय की तैयारी करनी कैसे चाहिए, कहां आप कमी कर जाते हैं, कहां आपसे चूक हो जाती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स कि खासकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर जो किताब है वो लक्ष्मीकांत जी की किताब बहुत पॉपुलर है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने इस किताब का नाम न सुना हो और जिसके पास यह किताब न हो। अच्छी बात है, किताब अच्छी है, मैं इसे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन यहां मैं इस किताब की सीमा भी बताना चाहूंगा। सीमा यह है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं, याद रखिए, तो इसके कई पार्ट हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो लक्ष्मीकांत की जो किताब है, जो सबसे मुख्य किताब है, उसमें मिसिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके विकल्प आपके पास नहीं है। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसके विकल्प के रूप में आपकी मदद करती हैं। अब ये है क्या, इसे समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस हिस्से को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिए, मैं समझने की बात कर रहा हूं, तब तक आप प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सही उत्तरों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके सटीक आंसर देने में आपको दिक्कत होगी। मैं वहां ये तो नहीं कहूंगा कि आप सटीक आंसर दे ही नहीं सकेंगे, लेकिन आपको दिक्कत होगी। तो वो अंश है क्या, देखिए, वो अंश है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका उल्लेख मिलता है उसके बारे में हमारी समझ। उदाहरण के तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है, एक स्टेट का है, स्टेट यहां राज्य से मतलब एक, आप यूं कह लीजिए कि राष्ट्र का है। तो राष्ट्र को जब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो बेसिकली वो राज्य नाम मिलेगा आपको कि राज्य, देखिए, पहले तो राजा महाराजा ही कहते थे ना, वो राज्य ही होते थे और वो अपने सेपरेट स्टेट होते थे, आप यूं कह लीजिए अपने आप में राष्ट्र ही होते थे वो। तो क्या आपको मालूम है कि राज्य क्या होते हैं? यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य की परिभाषा होगी या राज्य का जो चरित्र होगा, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी जो विशेषताएं होंगी, वो क्या होंगी? क्या आपने उसे पढ़ा है? और यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है तो सीधी सी बात है कि आप फाउंडेशन को ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और आगे चल करके जितनी भी बातें पढ़नी है, उन सब का संबंध सीधे सीधे राज्य से है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य क्या होता है, और केवल यही नहीं कि राज्य क्या होता है, बल्कि राज्य से जुड़े हुए जो दूसरे बिंदु होते हैं वे भी आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होने चाहिए। तो वे दूसरे बिंदु कौन से हैं? वे दूसरे बिंदु में जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य का विकास कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे राज्य विकसित होते चले गए, यानी बनते चले गए, उनका स्वरूप कैसे बदलता चला गया। और जब स्वरूप बदलता चला गया तो फिर हमारे पास किस किस तरह के राज्य हैं, यानी कि राज्यों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। केवल एक ही प्रकार तो नहीं है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र ही हैं, साम्यवादी हैं, तानाशाही हैं, अर्धलोकतांत्रिक हैं, इस तरह के बहुत सारे राज्य हैं। तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, बहुत स्पष्ट होने चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि यदि यह स्पष्टता नहीं होगी तो मान करके चलिए कि फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे। फिर जब आप भारत पर आते हैं तो भारत को हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं हम। तो क्या डेमोक्रेसी भी सिर्फ एक तरह की है या कई तरह की डेमोक्रेसी होती है? क्योंकि जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे या क्वेश्चंस में ही इस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग कर लिया गया कि संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, तब फिर आप क्या करेंगे? और इन सब के बारे में आपकी जो दृष्टि है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत साफ होनी चाहिए, जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां से आपको शुरुआत करनी होगी। इसके बाद फिर आप देखिए कि संविधान में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, बोलने में आप बोल लेते हैं, सामान्य तौर पर समझ भी लेते हैं, लेकिन अभी जो आपकी सामान्य समझ है वो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको मालूम हो, ये क्यों है, क्या है, इनका चरित्र कैसा होता है, पहले कैसे होते थे, आज ये किस रूप में है, और उसी के तहत फिर ढेर सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। समानता क्या होती है, किसे समानता कहेंगे आप बताइए, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की परिभाषा क्या है, कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये सब फंडामेंटल राइट्स में है। न्याय वास्तव में क्या होता है, किसे हम न्याय कहेंगे, यहां तक कि जब हम कहते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो ये क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कैबिनेट हम किसे कहते हैं, कैबिनेट का अर्थ क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, चुनाव किस किस तरह के होते हैं, कैसे चुनाव कराए जाते हैं, प्राचीन पद्धति क्या थी और आज की पद्धति क्या है। हालांकि मेरी ये बातें आपको थोड़ी सी भारी भारी सी लग रही होगी कि अरे बाप रे, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, इतना जानना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो इस विषय की नींव है। जब तक आप नींव से परिचित नहीं होंगे तो आप बताइए ना कि आपकी क्षमता कैसे विकसित हो सकती है। अगर मैं कहता हूं सॉवरेंटी, तो सॉवरेन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए ना, कि संप्रभु राष्ट्र, तो संप्रभु का क्या मतलब हुआ? अगर आप संप्रभु का अर्थ ही नहीं जानेंगे तो संप्रभु पर यदि कोई प्रश्न पूछ लिया गया है तो आप कैसे उसके सटीक उत्तर तक पहुंच पाएंगे? सामान्य उत्तर तक तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जब सटीक उत्तर तक पहुंचने की बात होगी तो ये सामान्य समझ काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये सबसे पहली भूल हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि मेरा स्टूडेंट से जीवंत संपर्क होता है और स्पेशली जो हमारे ऑफलाइन क्लासेज होती हैं 15 दिन की, वो पूरा वक्त तो मेरा स्टूडेंट के साथ ही बीतता है, तो मैं उनकी कमियों को वाच करता रहता हूं और मैंने पाया है कि ज्यादातर स्टूडेंट इस पूरे हिस्से को मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अरे इसको जानना क्या है, या फिर या यूं कह लीजिए कि बड़े चलताऊ किस्म से उसे पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। इस पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। मैं यहां अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि अभी जितनी बातें फ्रेंड्स मैंने की हैं कि आपको ये जाननी चाहिए, और उसमें बहुत सी बातें अभी मेरी छूट भी गई हैं, तत्काल रूप से याद नहीं आ रही हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, लेकिन जब आप एनसीईआरटी की किताबें उठाएंगे या पॉलिटिकल साइंस की दूसरी आधारभूत किताबें उठाएंगे तो उसमें आपको चैप्टर्स मिलते चले जाएंगे। तो इन सारे चैप्टर्स पर बकायदे ऑनलाइन के तहत लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। मैं आप सबको सतर्क करना चाहूंगा कि आप उन लेक्चर्स की अनदेखी न करें या उन्हें कमजोर न समझें। और यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं इनकी ज्यादा वैल्यू तो नहीं है, तो फिर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट प्री एग्जाम का आपके पास पेपर है, यानी कि पिछले साल जो आपके प्री के एग्जाम हुए हैं, उसमें जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर उठाइए और उस फर्स्ट पेपर में देखिए कि पॉलिटिकल साइंस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जो बात मैं कह रहा हूं इनफैक्ट वह कितना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। लीजिए, किसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहेंगे? अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है कि जिसका पास अपना संविधान हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है? सामान्य तौर पर तो ये समझ सबके पास होती है, लेकिन जब आप उनके विकल्पों को पढ़ेंगे तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि इसमें से सही कौन सा है। और आप भ्रम में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सही तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को समझा नहीं है, या यूं कह लीजिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझा है। संविधान का मतलब केवल कानून की किताब नहीं है या केवल मार्गदर्शक नहीं है। फिर ये जो संविधानिक सरकार है, बड़े बड़े दूसरे देश हैं जहां संविधान है, लेकिन संविधान होने के बावजूद उनकी सरकार को संवैधानिक सरकार नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान के पास अपना कोई संविधान नहीं है? और भी दूसरे राष्ट्र हैं, म्यांमार के पास क्या अपना संविधान नहीं है? लेकिन क्या आप उन्हें संविधानिक सरकार कहेंगे क्योंकि उनके पास संविधान है? तो इस तरीके से जब आप उलट पलट करके चीजों के बारे में सोचेंगे तब वह समझ विकसित होगी कि आप प्री एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पर उनके सही सही उत्तर दे सके। तो दोस्तों, मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे मूलभूत बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसके बाद जब हम लोग अब प्रश्न पर आएंगे तो शायद आप उन प्रश्नों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, या यूं कह लीजिए कि मैं जो बातें आपसे करूंगा वे बातें आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकेंगी। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। मेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।